थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यूहन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
यीशु ने कहा जीवन का जल जाओ मेरे पास, बुझा लो अपनी प्यास, शांति तुम्हें दूंगा। यीशु ने कहा जीवन का जल मैं तुम्हें दूंगा। आ जाओ मेरे पास, बुझा लो अपनी प्यास, शांति तुम्हें दूंगा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं जो बाइबल का अंतिम पुस्तक है। तो मेरे प्रियो, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और सीखें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें, मनन चिंतन कर सकें। और आज जब हमारे श्रोता भाई बहन अलग अलग स्थानों पर बैठकर आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, हम आपसे यही विनती करते हैं कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हर एक आपके वचन में से सीखकर अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर सके। पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा हम सबों को आशीष करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11 अध्याय उसके 19 पद से पढ़ते हैं। आइए आप मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 19 पद को पढ़ें। लिखा है, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। जब हम कलीसिया को फिर देखेंगे तब वह नए यरूशलेम में होगी और हमें निश्चित रूप से कहा गया है कि वहां मंदिर नहीं है परंतु यहां स्वर्ग में मंदिर है। मूसा ने जिस नमूने पर मिलाप वाले तंबू का मंदिर बनाया था वह स्वर्ग के मंदिर का ही प्रतिरूप था। लिखा है, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर इसराइल के साथ वास करता है। लिखा है खोला गया, इससे प्रकट होता है कि परमेश्वर की निकटता में आना और आराधना करना आरंभ हो गया था। यह इसराइल से संबंधित है क्योंकि कलीसिया के लिए मंदिर नहीं है। जी हां, पृथ्वी पर मंदिर को नापना और स्वर्ग में मंदिर का खुलना इस अध्याय में इसराइल की प्राधानता का उल्लेख करता है। अगला अध्याय इसे स्पष्ट करेगा। मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। इससे हमें स्मरण होता है कि हम वाचा बांधने वाले परमेश्वर और वाचा निभाने वाले परमेश्वर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वह इसराइल के साथ बांधी गई वाचा को निभाएगा। इस समय वह उनके साथ नई वाचा भी बांधेगा, अर्थात वह उनके हृदयों में अपनी व्यवस्था लिखेगा, पत्थर की पट्टियों पर नहीं। आप देख सकते हैं यर्मिया की पुस्तक 31 अध्याय उसके 31 से 34 पद में और तब इब्रानियों के पत्री 8 अध्याय उसके 8 से 13 पद में। यहां पर हम फिर से पढ़ते हैं, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े बड़े ओले पड़े। यह आने वाले दंड के प्रतीक हैं। मेरे मित्रों, इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 11 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 12 से जारी रखेंगे। अध्याय 12 का विषय है महाक्लेश के 7 नायक। इस अध्याय की विषय वस्तु है शैतान के स्वर्ग से निकाले जाने के बाद इसराइल और शैतान के मध्य अंतिम संघर्ष। अध्याय 12 और 13 में हमारे सामने 7 नायक प्रकट होते हैं। महाक्लेश के समय जब 7वीं तुरही फूंकी जाती है तब यह दृश्य आरंभ होता है। यद्यपि 7वीं तुरही के फूंके जाने का हम महाक्लेश और प्रभुराज के साथ अनंत काल के आरंभ के ठीक पूर्व के समय में आते हैं। अभी बहुत सी घटनाओं का होना शेष है। अध्याय 12 के आरंभ में 7 प्रधान नायक हैं जो इन घटनाओं का सूत्रपात करते हैं। ये नायक महाक्लेश में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके बाद प्रकोप के साथ कटोरे उंडेले जाएंगे। तदुपरांत व्यापारिक एवं धार्मिक बेबीलोन का नष्ट होना है। इसराइल की प्रधानता हमारे सामने प्रकट की जाती है जो पिछले अध्याय में पृथ्वी के मंदिर के नापने और स्वर्ग के मंदिर के खोले जाने के द्वारा व्यक्त की गई है। अध्याय 11 का अंतिम पद वास्तव में इस अध्याय का आरंभिक पद है। यहां जिन 7 नायकों का उल्लेख किया गया है वे लौकिक एवं अलौकिक, शारीरिक एवं आत्मिक, शासक और प्रजा के मानवीय प्रतिनिधि हैं। इनको पहचानना और इनका स्पष्टीकरण करना प्रकाशित वाक्य को भली भांति समझने के लिए अति आवश्यक है। हम देखते हैं पहली बात, स्त्री इसराइल है। इन नायकों में से सबसे पहला इस विचार का उदाहरण है। अब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की व्याख्या के सार पर आते हैं जो इस प्रथम नायक की परिक्रमा करता है। एक प्रसिद्ध एवं बुद्धिमान प्रचारक ने कभी कहा था, यदि आप मुझे प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 के स्त्री की व्याख्या करके बताएं तो मैं भविष्यवाणियों की आपकी व्याख्या के विषय टिप्पणी करूंगा। उस समय तो मैं उसे मूर्ख समझता था, परंतु अब मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। मेरा मानना है कि इस स्त्री की पहचान प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझने की कुंजी है। तो आइए आप मेरे साथ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय उसके 1 और 2 पद को पढ़ें। लिखा है, फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। यहां मुख्य प्रश्न है, यह स्त्री कौन है? कैथलिक कलीसिया का मानना है कि यह स्त्री कुंवारी मरियम है। अन्य विचारकों के अनुसार यह स्त्री सब युगों की कलीसिया है। लगभग सभी कलीसियाएं इसे यही मानती हैं। कुछ धार्मिक पंथों की संस्थापक स्त्रियां स्वयं को यह स्त्री मानती हैं। ऐसा विचार धर्मशास्त्र की बुद्धिमानी की व्याख्या का त्याग करना है। इस स्त्री की पहचान के चिन्ह सूर्य, चंद्रमा और सितारे हैं, जो यूसुप के स्वप्न के अनुसार इसराइल है, जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय उसके 9 और 10 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया, सुनो मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, क्या यह स्वप्न जो तूने देखा है, क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? याकूब ने सूर्य, चांद और सितारों को स्वयं राहेल और यूसुफ के भाई कहा है। निसंदेह उनकी भोजन सामग्री समाप्त हो जाने पर उन्होंने जाकर यूसुफ को दंडवत किया था। इस समय राहेल मर चुकी थी। वह स्त्री एक स्वर्गिक चिन्ह है, यद्यपि उसका कार्य पृथ्वी पर है। वह एक प्रतीक है, वास्तविक स्त्री नहीं है। उस स्त्री का जीवन इसराइल के सदृश है, क्योंकि इसराइल ही में मसीह का जन्म हुआ था, वही बालक है। बड़े दिन के अवसर पर हम सब यशायाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसके 6 पद और मसीह के जन्म से संबंधित बाइबल पदों को पढ़ते हैं। यह पद मसीह के जन्म से संबंधित है, परंतु इसका संबंध हमसे नहीं है। यह वास्तव में इसराइल से संबंधित है। यशायाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय के 6 पद में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यशाया कहता है हमारे लिए, तो वह किसके बारे में कह रहा है? कलीसिया के लिए? जी नहीं, वह इसराइल के लिए कह रहा है। यह अति स्पष्ट है कि यशाया इसराइल को संबोधित कर रहा है और वह उद्धारकर्ता के विषय में नहीं, एक शासक, राजा, एक प्रजापति के विषय में कह रहा है जो उन पर राज्य करने के लिए आएगा। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि बालक होने के कारण वह मानव जाति में जन्मा था, परंतु अनंतकालीन पुत्र होने के कारण वह दिया गया था। प्रभुता उसके कांधे पर होगी, अर्थात वह एक उद्धारकर्ता नहीं, एक राजा के बारे में कह रहा है। प्रकाशित वाक्य में हम इसे होता हुआ देखेंगे। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसके आने तक शांति नहीं होगी। 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय के 3 पद में लिखा है कि जब इस संसार के शासक कहेंगे शांति है, सब सुरक्षित है, तब अकस्मात ही उन पर विनाश आ पड़ेगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय हॉलैंड में एक बहुत बड़ी शांति सभा हो रही थी और जब उस सभा के प्रतिनिधि घर लौट रहे थे, तब अधिकांश जनों पर गोलियां चलाई गई थी। अतः शांति और सुरक्षा संबंधित मनुष्य की बातें हैं, सब व्यर्थ हैं, क्योंकि मनुष्य शांति के प्रयास में गलत मार्ग अपना रहा है। यह तो मनुष्य का मन है जो गलत है। केवल प्रभु यीशु शांति ला सकता है, वही शांति का राजकुमार है। यशाया इसराइल से कह रहा है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। यहोना इसी उपमा को यहां प्रकाशित वाक्य में काम में लाता है। इब्रानियों के पत्र 7:14 में लेखक कहता है, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उत्पन्न हुआ है। रोमियो के पत्र 9:4-5 में पौलुस लिखता है, वे इसराइली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं, पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। पौलुस इसराइलियों के विषय में कह रहा था। वह एक प्रश्न पूछकर आरंभ करता है, इसराइली कौन है? इसका उत्तर है, मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सामरिया के कुएं पर वह स्त्री सर्वथा सही थी जब उसने प्रभु यीशु को पहचान कर यहूदी कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:9 में हम पढ़ते हैं, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? मीका नबी की पुस्तक 5:2-3 में लिखा है, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न ना करे। तब इसराइलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे। देखिए, उसका जन्म बैतलहम में होगा, परंतु उसका आगमन अनादि काल से होगा। यहां पर हम पढ़ते हैं प्रसव की पीड़ा। यह इसराइल से संबंधित एक उपमा है। यशाया नबी की पुस्तक 66:7-8 में हम देखते हैं, उसकी प्रसव पीड़ा उठने से पहले ही उसने जन्मा दिया, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। ऐसी बात किसने कभी सुनी है? किसने कभी ऐसी बातें देखी हैं? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी, उससे संतान उत्पन्न हो गया। बैतलहम में मसीह के जन्म के बाद इसराइल महाक्लेश में होगा, उसकी पीड़ाएं होने से पहले ही उसने बेटा जन्मा। यह बेटा प्रभु यीशु था। अतः हम इस स्त्री को इसराइल कहेंगे। कोई भी स्त्री जो आज तक रही है, वरन कुमारी मरियम भी यह स्त्री नहीं है, यह इसराइल है और निश्चय ही कलीसिया नहीं है। यदि हम सतर्क हैं तो हम जानते हैं कि यह महाक्लेश का समय है और कलीसिया स्वर्ग में चली गई है। अतः यह स्त्री सर्वकालीन कलीसिया नहीं है। तब हम आगे देखते हैं, चिल्लाती थी। निश्चय ही प्रभु यीशु के जन्म से आज तक इसराइल यहूदी विरोध का शिकार रहा है, वरन मसीह के जन्म से भी पूर्व, क्योंकि शैतान जानता था कि मसीह का आगमन इसी जाति से है। आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे लाल अजगर, शैतान। अब हमारे सामने एक और नायक आता है जो मनभावन नहीं है। यह एक लाल अजगर है। यह प्रमोदी चरित्र नहीं है। इसमें हास्य वाली कोई बात भी नहीं है। यह अत्यधिक पावन एवं गंभीर दृश्य है। आइए हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12:3-4 में, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सिंह थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। मेरे मित्रों, लिखा है कि एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। स्मरण रखें कि ये चिन्ह हैं जो हमें दिए गए हैं, ये वास्तविकता नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं कि यदि यूहन्ना हमें चिन्ह देता है तो वह स्पष्ट करता है कि वह चिन्ह है। पद 9 में लाल अजगर को स्पष्ट रूप से शैतान कहा गया है। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। इसे पहचानने में हमें कल्पना करने या अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस दूसरे चिन्ह में शैतान के लक्षण प्रकट किए गए हैं, उन्हें पूर्ण रूपेण अनावृत किया गया है। पहली बात हम देखते हैं, उसे बड़ा कहा गया है क्योंकि वह सामर्थी है और संसार के सब राष्ट्रों को अपने अधीन रखता है। उसने प्रभु यीशु से कहा था कि यदि वह उसे दंडवत करे तो वह उसे संसार का राज्य दे देगा। अपनी आराधना करवाना शैतान का मुख्य उद्देश्य है। उस युग में तो रोम का राज्य था, परंतु वह हर एक राज्य को अपने अधीन कर लेता है। दूसरी बात हम देखते हैं, उसे लाल रंग का दर्शाया गया है क्योंकि वह आरंभ ही से हत्यारा रहा है। देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 44 पद में, उसके लिए मनुष्य के जीवन का कोई महत्व नहीं है। मैं समझ नहीं पाता कि अधिकांश मनुष्य उसकी सेवा में क्यों लगे हुए हैं। ऐसा क्यों है कि शराब अंततः अपने दासों का सर काट डालती है या उन्हें मार डालती है? क्योंकि उसके पीछे शैतान है और शैतान मनुष्य के जीवन को मान नहीं देता है, सम्मान नहीं करता है। उसे अजगर कहा गया है क्योंकि उसका स्वभाव जहरीला है। आरंभ में उसे लूसीफर अर्थात भोर का पुत्र रचा गया है, जिसे हम यहेजकेल नबी की पुस्तक 28 अध्याय उसके 12 से 19 पद में पढ़ते हैं कि उसे भोर का पुत्र के रूप में रचा गया था। इस समय वह दुष्टता का शिरोमणि है, पतन की गहराई है। वह परमेश्वर की दृष्टि में सबसे अधिक भयानक प्राणी है। यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो वह हमारा बैरी है। मेरे प्रियो, अध्याय 13 का पशु और अजगर एक से हैं, क्योंकि पुनः स्थापित रोमी साम्राज्य और ख्रिस्त विरोधी शैतान के अधीन है और उसी से सामर्थ पाते हैं। हेरोदेश और पिलातुस के माध्यम से रोम ने स्त्री के बेटे को नष्ट करना चाहा था। आगे हम देखते हैं कि इसके सात सिर अर्थात बुद्धि में परिपूर्णता का द्योतक है। यह शैतान का गुण था जब उसकी सृष्टि की गई थी। वह प्रधान करूप था। यहेजकेल की पुस्तक 28 अध्याय के 12 पद में उसकी आरंभिक अवस्था का वर्णन किया गया है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। यह शैतान के विषय हमारे दो भ्रम दूर करता है और लोग सोचते हैं कि वह कुरूप है, परंतु वह सर्वांग सुंदर बनाया गया था। यदि आप उसे देखें तो वह वैसा घृणित पशु नहीं है जैसा उसे दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है। कभी कभी उसके सिर पर सिंह लगा दिए जाते हैं। उसके पास सिंह नहीं है और उसके सिर पर सिंह होते हैं और उसके पांव में चिरे हुए खुर बना दिए जाते हैं। उसकी पूंछ को दो भाग कर दिया जाता है। यह वास्तव में शैतान नहीं, यूनानियों और रोमियों का पान देवता है। निसंदेह शैतान उसकी उपासना का आधार है, पर वह शैतान नहीं है। मैंने कुछ स्थानों के बारे में पढ़ा है, विशेष करके पिरगमोन और वहां के अनेक नगरों में इस देवता के मंदिरों के खंडहर आज भी देखे जाते हैं। यदि मनुष्य के पास परमेश्वर नहीं है तो वह उसकी ही उपासना करता है, परंतु शैतान अत्यधिक चतुर और बुद्धिमान है। हम उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। यदि हम अपनी शक्ति में उसका सामना करें तो तुरंत हार जाएंगे। वह सर्वांग सुंदर एवं बुद्धिमान है, बुद्धि से भरपूर है। यह धर्मशास्त्र उसके विषय में कहता है। आगे हम देखते हैं कि उसके 10 सिंह हैं। रोमी साम्राज्य का विभाजन। 10 सिंह। रोमी साम्राज्य शैतान की प्रभुता में है, जो संसार का और संसार पर राज करने का उसका अंतिम प्रयास है। मुकुट सिंहों पर है, सिर पर नहीं। मुकुट राजा का अधिकार और सत्ता के प्रतीक हैं। वह शैतान का नियुक्त अधिकारी है। तब हम आगे देखते हैं कि आकाश के तारों की एक तिहाई, यह स्वर्ग में विद्रोह है जिसमें एक तिहाई स्वर्गदूत शैतान के साथ थे। दानियल नबी की पुस्तक में हम इसे पढ़ते हैं। दानियल अपने एक कठिन अध्याय में इसका वर्णन करता है। दानियल की पुस्तक 8 अध्याय उसके 10 पद में और यहूदा 6 पद में। तब हम देखते हैं शैतान इस बेटे से घृणा करता है, क्योंकि आरंभ ही से उसके पांव तले शैतान के कुचले जाने की भविष्यवाणी है। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसके 15 पद में हम पढ़ते हैं, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। जी हां, शैतान आज भी यही कार्य कर रहा है और इसीलिए वह बेटे से अर्थात प्रभु यीशु से घृणा करता है। मेरे मित्रों, आज हमारे जीवन में इन बातों को समझना अति आवश्यक है कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं। क्या आज हम कहीं शैतान की आराधना में तो नहीं लिप्त हैं? मुझे देखना है कि सच्चा परमेश्वर कौन है, कौन मुझे उद्धार दे सकता है। मेरे प्रियो, निर्णय आपको लेना है और आपको भी बुद्धिमान बनना है। आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
ईश्वर का पुत्र यीशु ने हमें पाप से छुड़ाया है, उसके ही नाम से हमेशा हमें विजयी बनाया है। ईश्वर का पुत्र यीशु ने हमें पाप से छुड़ाया है, उसके ही नाम से हमेशा हमें विजयी बनाया है। यीशु ने कहा, जीवन का जल मैं तुम्हें दूंगा, आ जाओ मेरे पास, बुझा लो अपनी प्यास, शांति तुम्हें दूंगा। यीशु ने कहा जीवन का जल मैं तू